इसलिए मैं मेरे भैया की सेवा में रही। बोले भैया की सेवा, भैया की सेवा है। अब पेपर में न पास होगी तो अब उस मास्टर साहब को अकल कौन दे कि सचमुच में तो पेपर में पास हो चाहे न हो, लेकिन व्यवहार में तो वो पास हो गई कि भैया रूपी भगवान की सेवा कर रही है, माता रूपी भगवती को सहयोग कर रही है। इसी का नाम तो दिशा है। बड़े बड़े सर्टिफिकेट लेकर भटक रहे हैं, ऐशो ऐशो कर रहे हैं। मानव मानव के प्रति प्रेम हो, परस्पर देवो भव की भावना की दिशा नहीं मिली तो हजार हजार नमाजें पढ़ लो, हजारे हजार पूजा कर लो, लेकिन ठन ठन पाल रहोगे। परस्पर देवो भव, तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है। फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। सासू बहु लड़ रही है, देराणी जेठानी लड़ रही है, ननंद भाभी लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं, बाप बेटे लड़ रहे हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ रहे हैं। क्या रामायण में तो एक बड़ी सुंदर चौपाई है, मैंने अपने ढंग से उसमें थोड़ी गड़बड़ कर दी है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती को, उमा संत की यही बड़ाई, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत ते ही करत भलाई, मंद करत ते ही करत भलाई। बेटा बहू सासू भाभी ननंद अगर मुझसे मंद करते तभी भी मैं उससे भलाई का व्यवहार करता हूँ तो मेरा हृदय संत हो जाता है। उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत ते ही करत भलाई। मैंने गड़बड़ क्या की सुन लो। उमा कली की यही बड़ाई, 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 खा वही रोटी करही लड़ाई,
खा वही रोटी करही
लड़ाई। जय श्री राम, जय जय श्री। रुक जाओ, ये तो मेरी गड़बड़ वाली चौपाई है। हकीकत में तो कलयुग में संत की यही बड़ाई है। आपके हृदय की वासनाओं का अंत करना हो तो आप संतों का अनुकरण कीजिए। लीला तीर्थ नाम के एक संत थे। कुंभ के मेले में आपस में चर्चा हुई कि आप कैसे बाबा जी बने। उसने कहा आप कैसे बने, आप कैसे बने। लीला तीर्थ का आ गया वारा। तो उनके साथी ने कहा कि ये तो संत बने अभी 2 साल हुए, लेकिन घर में ही वे संत थे, कॉलेज में ही ये संत थे। कॉलेज के लड़के इधर उधर गप गपाटा लगाते, ये शांत होकर बैठे रहते। कई लड़कियां इधर उधर तिरछी नजर डालती, लेकिन ये उनके चक्कर में भी नहीं, आंख से नहीं गिरे, नाक से नहीं गिरे, त्वचा से नहीं गिरे, रसना से नहीं गिरे, वे तो घर में ही संत थे। जब दुष्चरित्रवान लड़के देखते थे कि ये हमारे को कंपनी नहीं देता है, तो उन लड़के और लड़कियों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। प्रयोगशाला में कोई इंस्ट्रूमेंट टूट गया था और तोड़ा था तो किसी ने, लेकिन उद्दंड लड़के और लड़कियों ने कहा कि तो लीला तीर्थ ने तोड़ा है। लीला तीर्थ के ऊपर 50 रुपया जुर्माना हो गया। उसने 50 रुपये भर दिए। जब अच्छे लड़के और लड़कियों को पता चला तो उनको दुख हुआ कि आप निर्दोष और आपने तोड़ा नहीं, तोड़ा तो उस उदंड बदमाश लड़के लड़कियों ने, और नाम तुम्हारा आया। आज से 50 साल पहले 50 रुपए बहुत बड़े होते थे, अभी के 500 समझ लो, 250 समझ लो, नहीं अभी के 2000 समझ लो, क्योंकि 100 रुपए तोला सोना मिलता था उस समय भांजे, 50 रुपए के आधा तोला सोना अभी के 2500 समझ लो। जयराम जी की मानना पड़ेगा। तो लीला तीर्थ को सहयोग देने के लिए कई विद्यार्थी और विद्यार्थिनियां एकत्रित हुई कि हम उदंड लड़कों की और लड़कियों की सारी पोल पट्टी एकत्रित करें और प्रिंसिपल को और मैनेजमेंट को बताएं कि हम, आप निर्दोष हो, आप कोशिश करिए और हम आपके साथ हैं। लीला तीर्थ ने कहा उनको नीचा दिखाना और मैं निर्दोष हूँ, उसलिए मैं उनके दोष खोजूंगा तो मेरे हृदय में दोष आएगा। 50 रुपया बिगड़ जाए तो हरकत नहीं, लेकिन मेरा हृदय न बिगड़े उसका मुझे ख्याल रखना है। इस बात से आपको हम प्रार्थना करते कि आपका 50-25 या 100 रुपया बिगड़ जाए तो हरकत नहीं, लेकिन आप अपना दिल मत बिगड़ने देना, क्योंकि दिल में दिलभर परमात्मा खुद रहता है, उस दिल की आप रक्षा करना। रक्षताम रक्षताम कोशानाम अपि हृदय कोशम तेन रक्षितम सर्वम रक्षितम इदम। आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, कोशों का कोश जो खजाना है वो हृदय रूपी खजाने की आप रक्षा कीजिए। उस खजाने की आपने रक्षा की तो सब कुछ रक्षित हो गया, और उस हृदय को खराब करके आपने सब कुछ पा लिया तभी भी रावण कंस हिटलर सिकंदर की नहीं आप ठन ठन पाल हो जाएंगे। इसलिए आप अपने हृदय की रक्षा करिए। परम भागवत विदुर ने हृदय की रक्षा की और वो तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। समय पाते औद्धव जी से मुलाकात हुई है। औद्धव वसुदेव के भाई, देवभाग के पुत्र हैं, यदुवंश के मुख्य व्यक्ति हैं, बृहस्पति से शास्त्रों की शिक्षा पाई है और श्री कृष्ण से तत्व ज्ञान पाया है और गोपियों से प्रेम शिक्षा पाई है। औद्धव में 3 विशेषता है। एक तो औद्धव के पास शास्त्र ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। दूसरा प्रेमा भक्ति है। तीसरा श्री कृष्ण के विश्वसनीय है। और भी औद्धव में विशेषता है कि औद्धव व्यवहार में कुशल है, वस्तु परिस्थिति को जानते हैं। एक बार श्री कृष्ण राजदरबार भर के बैठे थे, आकाश मार्ग से कोई प्रकाश पुंज उतरा, देखते देखते देखा तो ये देवर्षि नारद। श्री कृष्ण अपने आसन से उठे, भक्तों के भी भक्त ये भारत के भगवान कमाल करते। रामायण के भगवान ने शबरी भीलन के बेर खाने में संकोच नहीं किया और गीता के भगवान ने घोड़ा गाड़ी चलाने में संकोच नहीं किया। कैसे हैं ये भारत के भगवान। देवऋषि नारद का राज्य उचित, क्योंकि देवऋषि नारद संत हैं और श्री कृष्ण राज दरबार भर के बैठे। राज दरबार में कभी समस्याएं होती तो उसका समाधान करते, बाकी विनोद और हास्य भी खूब होता था। जरूरी नहीं कि सारा जीवन समस्याएं और उनका समाधान खोजते खोजते मर जाओ। जीवन में विनोद भी होना चाहिए, हास्य भी होना चाहिए, छुपा हुआ आनंद भी जगाना चाहिए। तो श्री कृष्ण की दरबार में खूब हास्य विनोद होता था। एकाएक नारद जी आए, सब उठ खड़े हुए और कृष्ण ने उचित आसन दिया नारद जी का, अभिवादन किया, अर्घ्यपाद से पूजन किया। नारद जी ने कुछ समाचार दिए और नारद जी नारायण नारायण करके चले गए। थोड़ी देर में एक व्यक्ति और घुसा दरबार में, उसने भी श्री कृष्ण को कुछ कहा। अब श्री कृष्ण ने उन दोनों व्यक्तियों की बात सभा में रखी कि हमें क्या करना चाहिए। एक व्यक्ति वो आया था जिसने कहा था कि जरासंध खूब सता रहा है हमें, आप कृपा करके उन राजाओं को छुड़ाइए और जरासंध का अंत लाइए। और नारद जी कहने को आए थे कि युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे हैं और आपको सादर आमंत्रित किया है। अब श्री कृष्ण सोचते हैं कि पहले हम यज्ञ में जाएं अथवा पहले उन राजाओं को जो दुष्ट कष्ट मिल रहा है उनकी मदद में जाएं। सभा में 2 विभाग हो गए, बलराम कृतवर्मा एक तरफ हो गए, औद्धव और साकेती दूसरे तरफ हो गए। बलराम सोचता है कि कंटक बढ़ जाएगा फिर काटना वृक्ष को कठिन होगा, इसीलिए दुश्मन के मूल में ही मट्ठा डालना चाहिए, अभी पहले पहले जरासंध का विनाश करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, बाद में समय मिलेगा तो युधिष्ठिर के यज्ञ में जाएंगे। औद्धव कहते हैं कि छोटी नदी जब बड़ी नदी से मिलती है तो आराम से सागर तक पहुंचती है, छोटा सा झरना बड़े बड़ी नदी को मिलता है तो वो सागर तक पहुंचता है। अभी हम मुट्ठी भरे हैं, हमें पहले युधिष्ठिर के साथ यज्ञ में, युधिष्ठिर के यज्ञ में जाना चाहिए, फिर युधिष्ठिर की राज्य सत्ता लेकर बाद में हमने दुश्मन से भिड़ना चाहिए। तो जहां दो दो विभाग होते थे, चुटकी भर में औद्धव समझौता कर देते थे और दोनों पक्ष को मान्य होता था, ऐसी योग्यता थी औद्धव में। औद्धव के साथ सत्संग कर रहे हैं विदुर जी। विदुर जी भगवान के भक्त भी हैं, धर्मात्मा है। उद्धव जी प्रेमा भक्ति से छके हैं, उद्धव जी तत्वज्ञान से छके हैं और बृहस्पति से शास्त्र ज्ञान पाकर व्यवहार और परमार्थ को दोनों को जानते हैं। जब परस्पर मिले और श्री कृष्ण ने अपनी लीला ऐसे ऐसे संग के लिए स्मरण आते ही उद्धव को रोमांच हो गया और भगवान के भक्त जो धर्मात्मा विदुर थे उनके आंखों से भी वो परमेश्वर की प्रीति के आंसू बहने लगे। मनुष्य जीवन भर जिसके तरफ चलता है उसी की याद में उसका चित्त द्रवित होता है। आप किसी मेले में जाओ तो एकाएक जिस किसी आदमी को गले नहीं लगाते, जिसके बारे में तुमने चिंतन किया है, जिसके बारे में तुमने सुना है, जिसके बारे में तुमको मिलने की इच्छा है, ऐसे आदमी को जब तुम मेले में देखते हो तो आपका हृदय उलसित होता है और उसको गले लगते हो। ऐसे ही परमात्मा के बारे में आप सुनते रहो, परमात्मा के बारे में आप चिंतन करते रहो और परमात्मा के नाते आप व्यवहार करते रहो तो इस इंद्रियों के मेले में जो छुपा है आत्मा परमात्मा, उसकी झलक आते ही आपको परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत में के तीसरे स्कंद में चार महिलाओं का वर्णन आता है। एक महिला वह है जो दैत्यों की माता बनती है, दीति। संध्या के समय पति को बाध्य करती है कि मुझे संसार व्यवहार में सहयोग करो। पति मना करते हैं कि अभी संध्या का समय है, प्रदोष काल है, इस समय क्या हुआ संसार भोग दुखदायी होता है, तू मान जा। उसने पति की बात नहीं मानी, त्वचा से गिरने को बाध्य कर दिया पति को, आंखों से और त्वचा से गिरने को पति को बाध्य कर दिया और यज्ञशाला में ही संसार व्यवहार किया। ऋषि नाराज हुए कि इस समय भगवान शिव कभी कभार विचरण करते, तुमने शिव की अवज्ञा की, तुमने उचित जगह नहीं अनुचित जगह, जो यज्ञ करने की पवित्र कर्म करने की जगह है उस जगह पर तुमने ये भोग भोगा है। दूसरी बात, तीसरी बात, तुमने अनुचित समय में मांग की और चौथी बात, मेरी इनकार होने पर भी तूने मेरे को घसीटा। दीति का प्रायश्चित प्रकट हुआ। काम आता है तो अंधा बना देता और जाता है तो कभी आंख दे जाता है। आप मेरी बात मत मानिए, आप कृष्ण की बात मत मानिए, आप शास्त्रों की बात मत मानिए, आप केवल अपना अनुभव भी मान ले तो बेड़ा पार हो जाएगा। जय राम जी की। काम विकार भोगने के बाद तुम्हारा अनुभव क्या है? क्रोध करने के बाद तुम्हारा अनुभव क्या है? लोभ या शोक करने के बाद तुम्हारा अनुभव क्या है? बोले महाराज ये तो ठीक नहीं है। इस ठीक नहीं है जो एक बार ठीक नहीं है देख लिया, दोबारा उससे थोड़ा बच जाए तो कल्याण हो जाए। सत्संग और ध्यान में बैठने से शांति और आनंद मिलता है, ये भी तुम्हारा अनुभव है। जो ठीक है उसको बढ़ाते जाइए और जो बेठीक है उसको ब्रेक लगाते जाइए तो कृष्ण की बात अपने आप मान लेंगे, हमारी बात अपने आप मान लेंगे और शास्त्र की बात अपने आप समझ लेंगे। आप अपने आप के ही गुरु बन जाइए भाई। एक बार जिस काम से धोखा खाया है, दुख देखा, उसको फिर दोबारा न करे, ये बड़े में बड़ा प्रायश्चित है। महाराज दीति ने प्रायश्चित किया। ऋषि ने कहा प्रायश्चित से शिव की तो तूने अवज्ञा की, काल की अवज्ञा की, पति की अवज्ञा की, स्थान की अवज्ञा की, चार चार दोष किए, फिर भी तू प्रायश्चित करती तो तेरे कुछ पाप कटे, लेकिन इस समय प्रदोष काल में जो गर्भाधान हुआ वे बेटे तो असुर होंगे, दैत्य होंगे, हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु अदिति के पुत्र। दूसरी माता है देवताओं की, दिति है दैत्यों की मां, अदिति है देवताओं की मां। तीसरी नारी का नाम आता है जो भक्त की मां है, मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति भक्त है। और चौथी बात आती है जो जीवन मुक्त, स्वयं जीवन मुक्त है और भगवान की मां बनती है। हे नारी, अगर अनुचित खाती और अनुचित करती है तो तेरी संतान दैत्य जैसी हो जाती है, अगर ठीक ठीक उचित करती है तो देवता जैसी हो जाती है, और कुछ बढ़िया करती तो भक्त जैसी हो जाती है, अगर संयम सदाचार और सब में ईश्वर देखती तो तेरे संतान भगवान जैसी हो जाती है। कर्दम ऋषि तप कर रहे थे गुजरात में सिद्धपुर जिसको आजकल बोलते हैं, उस जगह पर सरस्वती नदी के किनारे भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण ने कर्दम ऋषि को दर्शन दिया और आपने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर सृष्टि के विस्तार में तप को महत्व दिया, इस बात पर हम प्रसन्न हैं। मनु महाराज अपनी कन्या ले आएंगे और तुमको कन्यादान करेंगे और तुम फिर संसार का अनुभव करोगे, और तुमने मेरी तपस्या किया, मेरा ध्यान किया, तो मैं भी तुम्हारे घर अवतार लूंगा, ऐसा कहके भगवान नारायण अंतर्धान हो गए, इस प्रकार की कथा आती है भागवत के तीसरे स्कंद में। समय पाकर मनु महाराज और शत्रुपा अपनी कन्या को ले आए देवहूति को। कर्दम ऋषि ने आसन दिया सबको और देवहूति को भी दिया, लेकिन बुद्धिमान कन्या जानती है कि ये तो मेरे वर होने वाले हैं, इनके दिए हुए आसन का अनादर करना भी उचित नहीं, और ये अभी आसन दे और मैं धबाक से उस पर बैठ जाऊं ये भी उचित नहीं है। देवहूति ने युक्ति से आसन को स्वीकार किया और एक दायां हाथ दूसरा हिस्सा आसन को स्वीकार करके वहां बैठ गए, लेकिन पति की सेवा नहीं ली। कर्दम ऋषि देख रहे थे कि जितनी बाहर से सुंदर है उतनी भीतर से चरित्र में भी सुंदर है। मनु ने देवहूति के कुछ सात्विक गुण बताए। कर्दम ने कहा कि मैं देव ऋषि नारद से सुन चुका हूं, ये जब बालिका थी छत पर घूम रही थी तो इसका निर्दोष रूप लावण्य देखकर गंधर्व मूर्छित हो गया था। इसका रूप लावण्य तो सुंदर है ये है, लेकिन गुणों में भी इतनी सुंदर है जो भगवान की मर्जी। मनु महाराज अपनी कन्या कर्दम ऋषि को अर्पण करके गए। एक तरफ तो किसी पेड़ के नीचे तपस्वी बैठा और दूसरे तरफ कन्या कौन सी है, क्यों चक्रवर्ती सम्राट की बेटी है। अब सम्राट की बेटी कहां और पेड़ नीचे तपस्या करने वाला एक अकंचन कुछ नहीं साथ में रखने वाला तपस्वी कहां। लेकिन मनु महाराज जानते थे कि तपस्वी के पास तपोधन होता है, हमारा संसार का धन, उसके आगे कुछ नहीं। देवहूति बिहा के दे गए, अर्पण करके चले गए। देवहूति ने कर्दम ऋषि की ऐसी सेवा की कि कर्दम ऋषि को पता ही नहीं चलने दिया कि अभाव क्या होता है। तपस्वी अकेले रहते, जो आदमी अकेला रहता है उसको खबर ही नहीं पड़ती है कि मिलजुल के रहने में दूसरे के मन का भी ख्याल करना पड़ता है। लोग बोलते कि फलानी स्त्री ने अपने पति का मन छीन लिया है, ऐसे नहीं छीना जाता है, पहले अपना मन देना पड़ता है। जयराम जी की, अपना मन देना पड़ता है सेवा के बहाने, नम्रता के बहाने अपना मन देना पड़ता है पति को या मित्र को। जब हम अपना मन देते हैं तो उनका मन हमारा मन मिलता है, फिर जब हम हमारा मन खींचते हैं तो उनका मन भी हमारे पास खींच के आता है। जो मनमाना सबसे करवाना चाहता है वो किसी का मन नहीं ले सकता है, लेकिन पहले जो अपना मन देना जानता है वो सभी का मन ले सकता है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। आज की माइयां अथवा आज के मित्र या आज के दोस्त अपना मन देना नहीं चाहते और मित्र का मन लेना चाहते। पति अपना मन देना नहीं चाहता, पत्नी का मन लेना चाहता। पत्नी अपना मन नहीं देना चाहती, पति का मन लेना चाहते। सब झगड़ालू पैदा हो गए। फिर डाइवोर्स देते तभी भी ठिकाना नहीं पड़ता और दूसरी लाते तभी भी चैन नहीं मिलती है। पहले तो अपना मन देना पड़ता है। त्यागात शांति निरंतरम। तो श्री कृष्ण कहते अनाशितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च। ठीक इसी प्रकार देवहूति अपना कर्तव्य कर रही है, अपना मन कर्दम ऋषि की सेवा में लगा रही। जो अकेले रहते तपस्वी रहते होते हैं उनको पता नहीं होता है कि मिलजुल के कैसे रहा जाता है। वो तो अपनी हुकूमत से अपनी इच्छा से चलाना चाहते। फिर भी देवहूति ऐसे ढंग से चली कि कर्दम को कोई संकोच या कोई विघ्न बाधा नहीं पड़ा और देवहूति सेवा करते करते सेवा के सुख से अपने कर्तव्य पालन के सुख से वो भीतर से सुखी होने लगी। दो प्रकार का सुख होता है। एक तो वस्तुएं मिली, शाबाश मिला, कुछ मिला, उसका सुख होता है। दूसरा हमने वस्तु दी या शाबाश दी या अपना कर्तव्य पाला, जो कर्तव्य पालने का सुख है वो भोगने के सुख से बहुत ऊंचा होता है। तो एक कर्तव्य है सामाजिक और दूसरा कर्तव्य है आत्मिक। दो कर्तव्य जीवात्मा के साथ लगे हैं। जब सामाजिक कर्तव्य को महत्व देता है तो आत्मिक कर्तव्य भूल जाता है, आत्मिक कर्तव्य को महत्व देता है तो सामाजिक कर्तव्य छूट जाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि आत्मिक कर्तव्य भी पालो कि जीवात्मा को अपने परमात्मा स्वरूप में लगाओ और सामाजिक कर्तव्य भी करो, तभी उस सामाजिक कर्तव्य में दूसरे को मन देकर दूसरे का मन अपने मन के साथ मिलाकर आप व्यवहार में भी सफल हो सकते हैं और परमार्थ में भी सफल हो सकते हैं। देवहूति ने अपना मन कर्दम ऋषि के सेवा में लगा दिया। समय बीतता चला गया। वो ऐसी साध्वी देवी थी कि पति की अंतर्यामी बन गई। अगर आपको सुखी होना है तो शिष्य को गुरु का अंतर्यामी बनना चाहिए, भक्त को भगवान का अंतर्यामी बनना चाहिए, नौकर को सेठ का अंतर्यामी बनना चाहिए और पत्नी को पति का अंतर्यामी बनना चाहिए। क्या खाने से इनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्या बोलने से इनका मन प्रसन्न रहेगा, इस समय इनको क्या आवश्यकता है, आप उनके मन के साथ अपना मन मिलाइए। पति को वश करने का तरीका है, सेठ को वश करने का तरीका है, स्वामी को वश करने का तरीका और परमात्मा को वश करने का भी यही तरीका है। जयराम जी तो बोलना पड़ेगा। देवहूति को ये कला हस्तगत थी। समय बीतता चला गया। कर्दम ऋषि की तपस्या सिद्ध हुई। कर्दम ऋषि भूल ही गए थे कि मेरा विवाह भी हुआ है और देवहूति इतनी पवित्र वस्त्र आदि से और इतनी सेवा से मशगूल रहती कि कर्दम ऋषि को कभी गिरने का अवसर ही नहीं दिया उसने। आंख के बल से भी न गिरे, नाक के बल से भी न गिरे, त्वचा के बल से भी न गिरे। जब पति नहीं गिरता है, पत्नी नहीं गिरती तो पति भी नहीं गिरता है, तो एक दूसरे के पोषक हो जाते हैं। और वहां दीति खुद गिरती है, ऋषि को गिराती है। यहां देवहूति खुद भी संयत रहती और पति को भी संयत करती। जो आप गिरता है वो दूसरों को भी गिराता है और जो आप चढ़ता है वो दूसरों को भी चढ़ाता है। समय बीता, ऋषिवर की तपस्या सिद्ध हुई। देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो? देवी चौंकी के पतिदेव मेरे माता पिता मनु शत्रुपा मेरा हाथ आपके हाथ में दे गए थे, मैं आपकी सेविका। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो अब तुम क्या चाहती हो? स्त्री चाहती है कि पति के साथ रहे और संसार का अनुभव धर्म मर्यादा के अनुसार करे। ये बोलने तो जाती लेकिन स्त्री की शोभा है लज्जा, वो कुछ थोड़ा बोलती है फिर दाएं पैर के अंगूठे से धरती खोदती। कर्दम ऋषि समझ गए कि तुमको संसार का अनुभव करना है, लेकिन पेड़ के नीचे तो हम संसार कैसे बिताएंगे? अच्छा, उस सरोवर में स्नान करो। तुम जो कृश काय हो गई, पतली दुबली हो गई, तेजस्वी पना तो आया लेकिन शरीर एकदम क्रश हो गया। वहां स्नान करोगे एकदम युवती बन जाओगी। स्नान करके आई तो गहने गांठे सहित योग बल से वो महान महारानी जैसी शोभा देने लगी। कर्दम ऋषि ने भी स्नान किया, वे भी राजकुमारों को भी मात कर दे ऐसे सुंदर रूप धारण कर लिया। ये योग बल का सामर्थ्य है। जैसे आप सपने में मन से कुछ का कुछ बना लेते ऐसे ध्यान के बल से जागृत में भी कुछ का कुछ उत्पन्न हो सकता है। कर्दम ऋषि और देवहूति दोनों राजकुमारों को और राजकुमारियों को मात कर दे ऐसे सुंदर रूप धारण कर लिया। एक पुष्पक विमान बनाया और उस विमान की तो पंडित लोग विस्तार से व्याख्या करते हैं। पुष्पक विमान में रहने का खाने का रसोड़ा आदि, स्नान करने के लिए स्नानागार वो तो ठीक, लेकिन विचरण करने के लिए जगह भी थी। और पुष्पक विमान में एक विशेषता थी कि वे हवामान की गुलामी नहीं करता था। उस पुष्पक विमान में फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ती थी, पायलट की जरूरत नहीं पड़ती थी। योग बल से कर्दम ऋषि ने ऐसा विमान बनाया कि आज के वैज्ञानिक उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते, ऐसा वर्णन आया है। उसने अपने योग बल से ऐसे पक्षी विमान में बनाया कि ब्रह्मा जी की सृष्टि के पक्षी उन विमान में आकर, पुष्पक विमान में आकर किलहुल करते थे। उस विमान में रहकर ऋषि पत्नी ने और ऋषि ने संसार भोगा, लोक लोकांतर की यात्राएं की। और उस पुष्पक विमान में उन्होंने गृहस्थ धर्म का अनुसरण किया और 9 कन्याओं को जन्म दिया। अरुंधति वशिष्ठ को दी और सती अनुष्या एक ऋषि को दी। ऐसे 9 कन्या एक एक तपस्वी को अर्पण की। राम जी की गुरु माता अरुंधति वो कर्दम और देव ऋषि की देवहूति की बेटी। 9 कन्याओं को बिहा दिया। तब कर्दम ऋषि ने सोचा कि अब जीवन का कीमती समय तो ये संसार भोगने में और विवाह करने में और व्यवहार में चला गया। मुख्य कर्तव्य जो है इस जीव ब्रह्म की एकता में अब एकांत में जाऊंगा और अपने आत्मा को परब्रह्म परमात्मा में स्थित करके मुक्ति का आनंद लूंगा। तब देवहूति ने प्रार्थना की कि आपको भगवान ने वरदान दिया था कि मैं आपके घर अवतार लूंगा, तो तनिक आप ठहर जाइए, प्रार्थना करती हूँ। मैंने आप जैसे योगेश्वर को पाकर भी संसार का अनुभव चाहा। संसार में कुछ नहीं, बल बुद्धि तेज तंदुरुस्ती और आयुष्य नष्ट हो जाता है, समय नाश हो जाता है और जीवात्मा फिर 84 के चक्कर में घूमता है। ये मेरी गलती है, लेकिन मैं फिर भी एक प्रार्थना करती हूँ कि भगवान हमारे घर आने वाले हैं, तो आप कुछ समय घर में रहने की कृपा करें, इस विमान में रहने की कृपा करें। कर्दम ऋषि ने देवहूति की बात मान ली। समय बीता, भगवान श्री नारायण कपिल भगवान के रूप में अवतरित हुए। कर्दम ऋषि ने कपिल भगवान को प्रदक्षिणा की और हाथ जोड़े के प्रभु आप हमारे घर में अवतरित हुए, अब हमें आप इजाजत दीजिए कि हम एकांत में चले जाएं, जहां जगत न दिखे और जगत के गहराई में जो ब्रह्म है उसी की अनुभूति हो। कर्दम ऋषि को भगवान कपिल ने सांख्य शास्त्र का कुछ उपदेश संकेत दिया। कर्दम ऋषि एकांत में चले गए। अब देवहूति को हुआ कि हाय रे हाय, ये संसार तो सपने की नाई बीतता चला जा रहा है और कब मौत आकर पकड़ ले कोई पता नहीं। माता देवहूति ने भगवान कपिल को कहा कि आप मुझे उपदेश दीजिए और मुझे मुक्ति का मार्ग बताइए। भगवान कपिल ने कहा कि बड़ी बड़ी उपासना और पूजाएं करता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य में, प्राणी मात्र में जो मुझ परमेश्वर को नहीं देखता है, उसकी पूजाएं और उपासनाएं निरर्थक है। देवहूति माता को ऐसा सुंदर उपदेश दिया कपिल भगवान ने कि ऐसा दूसरी जगह नहीं पढ़ने में आता है। खुली आंख समाधि लगे ऐसा उपदेश दिया, तत्वों का चिंतन बताया, सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया, फिर योग का प्रश्न करने पर योग की भी बात बताई और भक्ति रस से, प्रेम रस से चित्त कैसे प्रेम स्वरूप ईश्वर में तल्लीन होता है उसका भी उपदेश दिया। मां को उपदेश देकर भगवान कपिल गंगा सागर की ओर चले और सागर ने उनका सत्कार किया और कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रचार प्रसार किया। माता देवहूति ने जो उपदेश सुना था उसका मनन करते करते वे मन और इंद्रियों से पार
दुख और सुख से बाहर जो अपना परमेश्वर स्वभाव है उसमें उनका मन ठीक स्थिर हुआ। हमारे मन में एक घंटे में मानो लाख एक हजार संकल्प विकल्प होते हैं। अभ्यास करते करते 900 होंगे, 900 वाले 800, 800, 700, 600, जो जो संकल्प विकल्प कम होंगे त्यों त्यों मन शुद्ध होता चला जाएगा। कपिल भगवान ने माँ देवती को ध्यान करने की विधि बताई और अपने चित्त को चैतन्य स्वरूप ईश्वर में कैसे लगाना इसका भी मार्गदर्शन किया। आप भी हर रोज आगरा में या जहाँ रहते हो वहाँ सुबह सुबह उठकर शांत मना होकर अपने श्वासोश्वास को देखें। जब तुम पूजा के रूम में बैठते तो जिस भगवान या गुरु में आपकी प्रीति है उनके पूरे श्री विग्रह को देखिए प्रेम से। पूरे विग्रह को देखते 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 उनके श्री मुख के तरफ देखिए। भगवान का ललाट, भगवान के नेत्र, भगवान का मुखमंडल देखिए। देखते 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 एक तान हो जाएंगे तो मुखमंडल पर जो भगवान की नासिका, भगवान के नेत्र अथवा भगवान के होश या भगवान का ललाट, ये जो भिन्न भिन्न अंग दिख रहे हैं, समय पाकर ये भिन्न भिन्न अंग दिखना बंद हो जाएगा। एक सफेद प्रकाश अथवा एक कुछ गोलाकार दिखने लगे तो समझ लेना कि ये नाम रूप और आकृतियां चली जा रही है और नाम रूप का आधार जो है वह परमात्मा मेरे हृदय में प्रकट हो रहा है।